सुन्दरसुन्दर्यो जैनधर्मोऽस्तुमङ्गलम् आत्मज्ञानम् स्वयं ज्ञानम् ज्ञानातन्नकरोति किम् परमावश्यकर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरन्धानाम् ீலிதரபி வந்தனே கவிநாச்சி கர்மணே பிரணமனோர்மீமீரே வைசேஷீதே சௌசேதீபே முனிஜானுச்சாரித்திரபீராச்சரோசனே தேக்கே பிரச்சேதே வந்தோ மனுஜேத்தே வர்த்தாரிசந்தே ஹரிஹந்தனே ஸ்ரீசீதனே ஜனமஸ்கரணபரியேரிதே கணபரணே அஜாபகோனே சர்வசாதுசமோஹனே
यह प्रवचन सार ऊपर के जो गुरुदेव के जो प्रवचन है दिव्य ध्वनि सार वह हम देख रहे हैं उसमें पृष्ठ क्रमांक 18 अपना चल रहा है। ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ जो है भगवान को विकल्प रूप वात्सल्य नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जो भगवान होते हैं उनके विकल्प रूप यानी कोई भी उनके विकल्प नहीं होते, वात्सल्य नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भगवान होते हैं उनके किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं रहते। तो वहाँ विकल्प कैसा बताया है कि वात्सल्य रूप यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वात्सल्य भाव रहे या राग रहे। द्वेष की तो बात की नहीं है। विकल्प रूप वात्सल्य यानी राग जिनका बाकी है जिनके प्रति, ऐसे भगवान नहीं होते। और कई भोले लोग तो ऐसा मानते हैं कि जब अभी भगवान के निर्वाण का समय आ गया, यानी कौन से महावीर भगवान के निर्वाण का समय आ गया, तो उन्हें अपने पट्ट शिष्य के ऊपर यानी गणधर के ऊपर बहुत वात्सल्य था, उन्होंने उसको नजदीक बुलाया। फिर गणधर ने उसके मुंह की तरफ अपने कान ले गए। क्यों? कि वो बहुत क्षीण हो गए थे, बहुत थक गए और ऐसे लेटे हुए थे, तो उनको बुलाया तो उन्होंने कान दिया। क्या कहा? बोलते तू फला फला गांव जा, उसको बहाना बता के भेज दिया। क्यों भेजा? कि मेरा जब निर्वाण होगा तब इन्हें बहुत दुख होगा। ऐसे भोले लोग मानते हैं। क्यों भोले? क्योंकि उनके सर्वज्ञ का स्वरूप ही पता नहीं है। अरे जो राग द्वेष से सहित है, राग से सहित है, जिनके अभी 12वां गुणस्थान यानी यथार्थ क्या चारित्र भी प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे जीव को सर्वज्ञता कैसे होगी? अगर सर्वज्ञता है तो वह जीव भी अनंत सुखी होना चाहिए। और अनंत सुखी है तो यह जो इच्छा हो रही कि मेरे कारण दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए, ये इच्छा निर्माण होती है, यह इच्छा ही महादुख रूप है। चल रहा है ये ऐसे ऐसे लोगों की मान्यता है और हमें लगता है वाह वाह ऐसा गुरु कि अपने शिष्य के प्रति कितने उसके वो करुणा भाव है। ओहो जय हो जय हो। परंतु यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान को विकल्प रूप वात्सल्य नहीं होता, वात्सल्य ही नहीं होता है। क्यों? जो प्राणी स्वयं के स्वभाव को समझना चाहते हैं, स्वयं का निश्चय अनुग्रह करते हैं, उन पर भगवान की मेहरबानी कृपा अथवा वात्सल्य है ऐसा कहने में आता है। ऊपर का टाइटल हमने देखा था, याद हो गया होगा तो तुमको, क्या है ऊपर टाइटल में क्या लिखा है? अपनी आत्मा की मेहरबानी हुई तो भगवान की मेहरबानी हुई ऐसा कहने में आता है। तो हम क्या समझते कि जब तक भगवान हमारे पर मेहरबानी नहीं करता हमारा कल्याण नहीं होगा, तो उसने भगवान के स्वरूप को ही पहचाना नहीं है। यहाँ तो इस तरह कहते हैं कि जब कोई जीव अपने स्वरूप को पहचानता है और अपने स्वरूप में एकाग्र होकर वह अपना आत्मानुभव करता है, तो जब उसे ऐसी मुनि दशा धारण हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है, तब निमित्त रूप से भगवान पर आरोप आता है कि उनके मेहरबानी से यह बात घटित हुई है। कहना बात अलग है, कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्यवहार ने और निश्चय ने ऐसे दो नयन से ही कथन किया जाता है। लेकिन ऐसा व्यवहार ने का किया हुआ कथन हम सच्चा मानते हैं तो हमारे जैसे हम ही है वो, तो कैसे आप समझ लेना भी मैं क्यों बताऊं, क्योंकि हर एक को अपने अपनी परिस्थिति मालूम है ना। यहाँ क्या कहते हैं, ऐसे व्यवहार से जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो प्राणी स्वयं के स्वभाव को समझना चाहते हैं और क्या स्वयं का निश्चय अनुग्रह करते हैं यानी अपना अनुभव कर लेते हैं, उन पर भगवान की मेहरबानी कृपा अथवा वात्सल्य है ऐसा कहने में आता है। निमित्त का अनुग्रह कहने में आता है। अब दूसरा एक पॉइंट बहुत बढ़िया बताते हैं कि आत्मा की प्रभुता ऐसी है कि किसके आत्मा की बात कर रहे हैं, हर एक आत्मा की कह रहे हैं। देखो देखो उसमें हम भी आ गए ना सर, तो क्या कहते हैं, आत्मा की प्रभुता ही ऐसी है, प्रभुता यानी प्रभुपना प्रभुत्व, कि दूसरे के पास से प्रभुता नहीं लेता और दूसरे को प्रभुता नहीं देता, स्वयं ही परमेश्वर है, अपनी परमेश्वरता अपने में ही रखता है। क्या कहते हैं, देखो जिस जीव को अपने स्वरूप का पता लगता है तो वह समझता है कि मैं स्वयं प्रभुत्व सहित हूँ, मेरे में ऐसी प्रभुता है कि मैं किसके पास जाके प्रभुता ले लूं, या अन्य कोई आत्मा होगा वो दूसरे किसी को प्रभुता दे दे, ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि स्वयं ही परमेश्वर है, परमेश्वर यानी प्रभुत्वधारी प्रभुता धारक, अपनी परमेश्वरता अपने में ही रखता है, ऐसी आत्मा की प्रभुता है। ऐसा भान होने के पश्चात जो ज्ञान प्रकट होता है वह ज्ञान जानता है कि यहाँ ऐसे ही परमेश्वर निमित्त है। कौन से परमेश्वर? ये साक्षात जो पंच परमेश्वर वाले परमेश्वर जो है यानी अरिहंत सिद्ध, वे ऐसे ही है। कैसे हैं कि जो तो अन्य को कुछ नहीं देते हैं ना अन्य से कुछ लेते हैं, फिर भी जब यह जीव यानी मैं स्वयं अपने स्वभाव में एकमेक हो जाऊं, स्वभाव में एकाग्र हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं, तो यहाँ पर ऐसा कहने में आएगा कि ओहो इस भगवान की मेरे पर कृपा हुई है, मेहरबानी हुई है, उनके आशीर्वाद से मुझे ये सारा प्राप्त हुआ है। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहने में कोई उसमें कोई क्या कहते हैं दोष नहीं है, लेकिन कोई मानता हो तो कहते हैं वो गड़बड़ है। अब आगे कहते हैं भगवान किसे निमित्त है, कि जो स्वयं की प्रभुता प्रकट करे उसे। देखो अभी क्या है, इस पर से मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई। पहले सोनगढ़ में कहो या जयपुर में कहो, ऐसी बात चलती थी कि कोई शिविर लग जाए तो कोई दाता वहां आवे और कहवे कि साहब ये आधी कीमत कब होने वाली है, जो किताबें शास्त्र जो होते हैं वह बेचाण विभाग में रखते हैं बेचने के लिए, बिक्री के लिए। तो कभी कोई ऐसा दाता आ जाता है, कहते हैं कि नहीं, जो भी अभी बिक्री हो जाए हम उसको 50%, यानी आपने 10 लाख का साहित्य बेचा तो हम 5 लाख देंगे, 4 लाख का बेचा तो 2 लाख देंगे, 10,000 का बेचेंगे तो 5,000 देंगे। तो लोगों को तो इतनी टेव हो गई थी, कैसी कि जो किताब 1 रुपए कीमत की हो वो 4 आने में तो बेचान में रखते थे। वो भी लोग हमारे जैसे लोभी ऐसे थे, दुआना कम हो जाए इसके लिए रुक जाए, और फिर आखिरी 2 दिन हो जाए तो कोई ना कोई आके डिक्लेयर कर दे ऐसा, तो धमाधम गर्दी हो जाती थी, और किसी को एक किताब दे तो 100-100 किताब मांग लेता था। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो परिपाटी थी वो बंद करने के लिए नक्की कर दिया कि अभी से इसको 50% में नहीं बेचना। तो कोई हमारे जैसा लोभी जावे और पूछे कि क्यों साहब ये अभी 50% कब होने वाला है, तो जवाब क्या मिलता था, जब तुम करोगे तब। क्या यानी जो 1 रुपए की वस्तु दुआने में लेना चाहता है क्या वो 50% देगा, नहीं समझ रहे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये बोले आपका एक बात राय को निकाली आपने, तो यहाँ क्या कहते हैं, भगवान किसे निमित्त है, तो उत्तर देते हैं जो स्वयं ही प्रभुता प्रकट करे उसे। यानी जब मैं अपने स्वयं में लीन हो जाऊं, प्रभुता, प्रभुत्व नामक गुण है ना, प्रभुत्व है, स्वच्छत्व है, प्रकाशत्व है, ऐसे अनेक जो गुण है वो एक साथ प्रकट हो जाएंगे निर्मल रूप से। तो ऐसा जो प्रभुत्व नाम का गुण है जो प्रकट करेगा उसे निमित्त है, ख्याल रहे। तो ये कम कीमत कम कब होगी, तो जब तू करेगा तब, तो जब तू स्वयं प्रभुता प्रकट करेगा तब उसे तुझे भगवान निमित्त है, ऐसा कहने में आ रहा है। ऐसे ही गप मारने के लिए नहीं, आज पुष्पाबेन सामने बैठे तो उनको बताने के लिए नहीं, ये तो यही यहाँ बात है, यहाँ लगी है ना। क्या लिखा देखो, जो स्वयं की प्रभुता प्रकट करे उसे निमित्त है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वयं की प्रभुता जिसने प्राप्त की है तब उन पर तीर्थंकर की प्रसादी अथवा कृपा हुई है। क्या कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, सत सत यानी त्रिकाल टिकने वाला ऐसा सत, चित चित यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप और आनंद स्वरूप ऐसा जो मैं हूँ, इस प्रकार की प्रभुता जिसने प्राप्त की है यानी जिसने आत्मानुभव किया है, तब उनकर उन पर तीर्थंकर की प्रसादी यानी तीर्थंकर का उपकार है या तीर्थंकर की मेहरबानी हुई है, तीर्थंकर की उनके ऊपर वात्सल्य भाव है, ऐसा कहने में आएगा। तो हम ऐसे बोले हैं कि हम भगवान का प्रसाद बांटने को चालू करें, वो तो आपको बताया था एक टाइम मुख्य खप है ना, याद करें हिंदू जन को याद है, बताया दिया था, क्या बताए, वो प्रसाद बांटते हैं ना, तो वो प्रसाद लेने के लिए सिंधी लोग जमा होते थे, तो बोलते मुख्य खप्पे मुख्य खप्पे, भूल गए आप, ये बताई थी मैंने स्टोरी, जाने दो अभी उससे कोई मतलब नहीं। यानी हम ऐसे हो गए हैं कि भगवान की प्रसादी है ऐसा कहने में, तो हो अपो अपो खावे तो फिर क्या एकदम सर्क 2 उंगली रह गया प्रसादी, ऐसा मानते। पर यहाँ तो प्रसादी किसको कहे कि तूने स्वयं अपने आत्मा का अनुभव किया है तो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की तेरे ऊपर मेहरबानी है, तेरे पर वात्सल्य भाव है, ऐसा कहेंगे। क्या कहते देखो, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वयं की प्रभुता जिसने प्राप्त की है, तब उन पर तीर्थंकर की प्रसादी अथवा कृपा हुई है, ऐसा निमित्त से कहने में आता है। एक समय में तीन काल तीन लोक को जानने वाली पूर्ण पर्याय प्रकट हुई है, उनका निमित्त सदा ही हाजिर है। अब क्या कमी है? उपादान की योग्यता की कचास कितनी है, इसलिए वो तुम्हें भी निमित्त नहीं। अरे भाई, तेरे कार्य होगा तो उन पर निमित्त का आरोप आएगा, अभी कार्य हुआ ही नहीं तो निमित्त कहेगा। ख्याल में आया? लेकिन फिर भी कहते वो जो सर्वज्ञता है वो निमित्त तो त्रिकाल हाजिर है। लेकिन यहाँ बताना क्या है, तेरे में कोई परिणमन नहीं हो रहा है, तू स्वयं पे ऐसा पुरुषार्थ जागृत करके अपने आत्मा का अनुभव कर, वहाँ सामने तो निमित्त हाजिर है ही है। परमेश्वर पद स्वयं अंदर स्वरूप विद्यमान है, वे भगवान तो निमित्त मात्र है। यानी ये जो परमेश्वर पना जो है, वह जो परमेश्वर पद जो है, वह स्वयं अपने अंतरंग में विद्यमान है। और वे जो भगवान है वे तो निमित्त मात्र है। करुणा हम पावत है तुम की, हे भगवान तेरी करुणा को हम पाना चाहते हैं, तथा भगवान की करुणा संपूर्ण जगत के ऊपर समान है। ये भी एक नया पॉइंट है, क्योंकि वो तो कहते हैं वीतराग है, काम्य भाव के धारक है, नहीं इसके ऊपर कृपा करो, नहीं इसकी ये बहुत दूर बैठा है, इसके ऊपर नहीं करूं, ये जरा अच्छा लगता है, दिखता अच्छा है, चलो इसके ऊपर करो, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या कहते हैं, वे तेरी करुणा तो हम पाना चाहते हैं। कहाँ गए? हे भगवान तेरी करुणा तो हम पाना चाहते हैं, तथा भगवान की करुणा संपूर्ण जगत के ऊपर समान है। इस प्रकार गांव में सभी का निमंत्रण होता है, तब वहां सभी भोजन के लिए आते हैं। किंतु ये पहले ऐसा था, गांव भोजन होता था, कोई ऐसा किसी के घर में शादी होती थी, गांव में समझ लो कि 1000 लोग जाते में जाते रहते, 50 लोग जो भी होते होंगे, तो पूरे गांव को भोजन करने के लिए बुलाते। अभी क्या बताएं, क्या नहीं? तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि जिस प्रकार गांव में सभी का निमंत्रण होता है, तब वहां सभी भोजन के लिए आते हैं, किंतु कोई बीमार हो अथवा बहुत वृद्ध हो तो वह नहीं आ सकता, इस प्रकार सभी को भोजन कराते हैं। वैसे ही यहाँ कहते हैं कि भगवान में संपूर्ण जगत के जीवों को तारने की ताकत है, यहाँ निमित्त की बात करते हैं। यदि परमेश्वर कोई परमेश्वर ही तार दे, ऐसा हो तो किसी को पुरुषार्थ करना नहीं रहता, जो स्वयं अपना आश्रय करके स्वयं तिरे तो उस पर भगवान ने कृपा की, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसा तू तरण तारण वगैरह वगैरह जो पूजा में आता है ना, भवन निवारण, तो ये तो स्वयं स्वयं तिर जावे तो उसको तारणहार कहने में आएगा। लेकिन हम तो ऐसे जो ढोलक ये बोले के डुम 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 चालू हो जाते हैं, भक्ति 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 मार्ग है ऐसा कर। क्या कहा कि यदि कोई परमेश्वर ही तार दे, ऐसा तो ऐसा हो तो किसी को पुरुषार्थ करना नहीं रहता है, एक बात, जो स्वयं अपना आश्रय करके स्वयं तिरे, दूसरा कोई तिरा देवे ऐसी भी बात नहीं, तो उस पर भगवान ने कृपा की, ऐसा कहा जाता है। स्वयं की कृपा हुई यानी स्वयं की कृपा हुई यानी जो अपना लक्ष्य हमेशा जो बाहर में दौड़ता था उससे हटकर जब स्वरूप में लगता है, तो अपने स्वरूप की जो समय समय में जो भाव हिंसा हो रही थी वो रुक जाती है, तो उसने अपने स्वयं पर कृपा की, ऐसा कहने में आता है। वहाँ व्यवहार श्रद्धा हुए, वो श्रद्धा चाहिए, शुरू करना वह व्यवहार श्रद्धा के विषय में, ऐसे ही भगवान निमित्त थे, अतः ऐसा व्यवहार से अनुग्रह बताया है। भगवान सभी को तारने में निमित्त होते हैं, ऐसी शक्ति है। तू तिरे तो वे निमित्त कहलाएंगे। जैसे पानी तो तिरने में निमित्त है ही, किंतु तिरने की ताकत वाला पानी में गिरे तो तिरता है। पानी सभी को तिरने में निमित्त है, अर्थात जिन्हें तैरना आता है उसे पानी निमित्त है। वैसे ही भगवान सभी के तिरने में समर्थ निमित्त है, किंतु जो स्वयं के पुरुषार्थ से तिरे उसे भगवान निमित्त कहलाएंगे। ये ख्याल में आया सब? हाँ, बहुत आसान है भाई, आप तो समझ गए। क्या कहते हैं? इस तरह चार घाती कर्म का नाश किया है, ऐसे केवल ज्ञानी भगवान सभी को तिरने में निमित्त है। भगवान का पुरुष यानी आत्मा दूसरों को तिरने में निमित्त होता है, किंतु संसार में डूबे हुए को निमित्त नहीं होता। यह निमित्त प्रश्न है, यह निमित्त धर्मास्तिकाय जैसा है, तो क्या उत्तर क्या देते हैं? समाधान, जिस तरह जो जीवादि गति करते हैं, तो ये जीवादि में और किसको लेना? हाँ लता बेन, जीवादि में क्या लिखा देखो, जिस तरह जो जीवादि गति करते हैं, कौन सा जीव लेना अभी? हाँ बहुत अच्छा, आदि में किसको लेना? उद्गल, दोनों और बाकी को क्यों नहीं लेना? नहीं नहीं वो बराबर है आपका, लेकिन जीवादि गति करते हैं तो ये आदि में केवल भूतगल को ही क्यों लेना, अन्य को क्यों नहीं लेना? ऐसा मेरा प्रश्न। तो भूतगल भी अचेतन है ना बेन? प्रतिभा तो आप बता पाएंगे नहीं? भावना बेन आपको तो जानती है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, और अन्य चारों में नहीं है, तो वह तो एक ही जगह पर स्थित है। गमन गमना दी? हाँ, क्यों क्यों करू सकता? बरोबर है, तो क्यों करते हैं और बाकी को क्यों नहीं करने आता है? बाकी अन्य चार द्रव्य रह गए ना, देखो धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य। अभी इन्होंने उत्तर दिया था, आपने सुना नहीं, कोई बात नहीं। देखो उन्होंने ये बताया, ये सारी बात हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में बहुत अच्छी तरह से सीखी है, सिखाई है, जो भी आप समझ लो। देखो क्या कहते हैं, जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य है, इन दोनों द्रव्य में क्रियावती शक्ति नामक एक गुण है, क्रियावती गुण का नाम है। उसका कार्य क्या है? गमन रूप गति करना या स्थिति करना, यानी एक जगह रहना। तो अभी आप में क्रियावती शक्ति है ना? हाँ है। तो क्या हो रहा है, आप एक जगह पे स्थित है, तो अभी क्लास खत्म हो गया, घर में जाने का टाइम हो गया, तो आप उठ के चले जाएंगे। तो आप जो जा रहे हैं तो वहां क्या हो गया, एक गति रूप परिणमन हो गया। तो आप जाओगी तो शरीर को साथ में लेके जाओगी कि यहीं छोड़ के जाओगी? शरीर के लेके जाएंगे ना, तो शरीर का काम आप कर रहे हैं ना, और यहां तो बोलते एक ग्रह दूसरे ग्रह का कार्य नहीं करते हैं। तो कैसा शरीर को क्या हो गया, वो अपना थोड़ी सुनेगा, घबराना मत। मैं आपको हाँ, पुद्गल है ना ये शरीर जो है ना, ये पूरा पुद्गल है, और एक एक परमाणु में क्रियावती शक्ति नामक शक्ति है। वो अनंत परमाणु का गति रूप परिणमन होना और इस आत्मा का भी गति रूप परिणमन होना, दोनों एक समय में कार्य होता है। तो हमको लगता है देखो देखो देखो, हमने शरीर को हिलाया डुलाया, देखो ये सारी भ्रांति है जीव को। जब तक उसको असलियत नहीं मालूम पड़ती है तो समस्या है, ये देखो मैंने शरीर को हिलाया, ये देखो मैं उंगलियां देखो हिलाता हूँ। अब पैरलिटिक हो जाए तो नाक के ऊपर मक्खी बैठी, उसको भी नहीं हटा पाएगा तो। ऐसा देखा है ना हमने, तो तू शरीर का करता है ना अभी, तो हटाना अभी। अरे उसकी योग्यता खत्म हुई, तो पहले भी उसकी योग्यता से हिल रहा था, घबराता क्यों है? तो क्यों नाहक अपने को समझता है कि मैं परका करता हूं करके? तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमारा बहुत, अभी हम तो मानते हैं ना कि हम बस से यहाँ आए, या ये हमारी बहन कहाँ से आई, अहमदाबाद से ट्रेन से आई, तो ट्रेन उसको लेके आई, ऐसा हो गया तो क्या ट्रेन लाई है उसको? ट्रेन जो आई है वो अपनी अपनी क्रियावती शक्ति के कारण, ये शरीर जो आया वो उसके उसके क्रियावती शक्ति के कारण, और ये आत्मा के प्रदेश आए वो भी अपने अपने क्रियावती शक्ति के कारण। लेकिन हम क्या मानते हैं, नहीं बस से यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है, या ट्रेन से हम आए, या हम क्या बोलते हैं घोड़े पर बैठ के आए, तो क्या घोड़ा हमको लाता है? बिल्कुल नहीं। देखो ये सारी बातें यहाँ आस्ते आस्ते आपको समझ में आएगी, इसलिए आपके लिए इन लोगों की सब बात बहुत बार हो गई है, बात मैंने आपके लिए खाली कहा है, क्योंकि ये मूल बात जो है ना, वो मूल बातों में हम कहीं अटके रहे तो आगे चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात करो सब दिमाग में नहीं बचती, ऊपर से चली जाती। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल इन दोनों ही द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है, अन्य द्रव्यों में नहीं है, इसलिए इसको एक अपेक्षा से विशेष गुण भी कहा जाता है, और दोनों में है इसलिए सामान्य गुण भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इसलिए इनको निष्क्रिय कहते हैं। निष्क्रिय यानी क्या, कि एक जगह से क्षेत्र क्षेत्रांतर नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, इसलिए उनको निष्क्रिय कहा। और ये कैसे है, क्रियावान है, क्रियावान यानी एक जगह से दूसरी जगह हिलने डुलने वाले, जाने वाले, गमन आदि करने वाले। अब ये आगे बात आने वाली है, इसलिए मैंने अभी कहा, क्योंकि आगे जाके कहेंगे कि ये धर्मास्तिकायवत निष्क्रिय है, ये निमित्त है लेकिन धर्मास्तिकायवत, यानी क्या कहते हैं कि धर्म जो द्रव्य है वो गति में निमित्त है, तो धर्म द्रव्य उसको गति हमेशा करावे ऐसा नहीं है, स्वयं जीव गति रूप परिणमित होता है तो उसको वह निमित्त है, तो वो चलने में हलने में कोई मदद नहीं करता, लेकिन जब वह कार्य हो रहा है तो धर्मास्तिका है, वहां द्रव्य है और वह निमित्त रूप से, ऐसा आगे कहेंगे, इसलिए मैंने ये सारी बातें अभी आपको समझाई। अब क्या कहते, देखो जिस तरह जो जीवादि, यानी यहाँ जीव जो जितने भी जीव हो और साथ में जो पुद्गल है, वो सबको जो गति करते हैं उनको धर्म द्रव्य निमित्त है, देखो आगे नहीं बात आ गया और दूर जाने की जरूरत नहीं है, किंतु जो गति न करे उसको वह निमित्त नहीं कहलाता, यानी जो धर्म द्रव्य स्वयं अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य एक ही जगह पर स्थित है, वह गति रूप मतलब इधर से उधर जावे ऐसा होगा ही नहीं है। तो यहाँ मूल बात क्या चल रही थी वो भूल नहीं जाना, तो इन्होंने कहा जो भगवान है वो दूसरे को तिरने में निमित्त है, और संसार में डूबने में भी निमित्त होंगे कि नहीं, तो कहते नहीं, क्योंकि जो स्वयं डूबते हैं वो तो अपनी योग्यता से डूबते हैं, और जो तिर जाते हैं उनको ये भगवान निमित्त है, अब उनके लिए निमित्त कौन है बताएंगे हम। क्या कहते, देखो जिस तरह जो जीवादि गति करते हैं उनको धर्म द्रव्य निमित्त है, किंतु जो गति न करे उनको वह यानी धर्म द्रव्य निमित्त नहीं कहलाता, इसी तरह जो तिरते हैं उनको भगवान निमित्त कहलाते हैं, संसार से तिरने में चाहे जो कोई भी निमित्त हो जाए ऐसा नहीं होता, यह बताते हैं। अब यहाँ इन्होंने और एक तीसरा ही पॉइंट निकाला है, क्या कहते हैं कि संसार तिरने में कोई ऐरा गहरा, यानी तुम्हारी भाषा में बोलना हो तो टॉम डिक एंड हरी, और शास्त्रीय भाषा में बोलना हो तो सच्चे देवगुरु शास्त्र छोड़कर अन्य, क्या कहते, देखो संसार से तिरने में चाहे जो कोई भी निमित्त हो जाए ऐसा नहीं होता है, यह बताते हैं। जो पुरुष तिर गए हैं उन्हीं का वचन निमित्त है, यानी जो स्वयं संसार से पार हो गए हैं, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है या जिन्होंने अभी अरिहंत पद प्राप्त किया है, वो तो संसार से निकल गए ना करीबन, तो ऐसे जीवों के वचन यानी उनका उपदेश ही निमित्त है, जिसमें अन्य जीवों को तिरने में, क्या कहा थर्ड लाइन से फिर पढ़ता हूँ, संसार में तिरने में, संसार से तिरने में चाहे जो कोई भी निमित्त हो जाए ऐसा नहीं होता है। यह बताते हैं जो पुरुष गिर गए हैं उन्हीं का वचन निमित्त है, जो तिर गए हैं ऐसे पुरुष ही अन्य को निमित्त होते हैं, किंतु जो पुरुष स्वयं डूबे हुए हैं वे पुरुष अन्य को तिरने में निमित्त नहीं होते। अभी बहुत लोग बोलते हैं ना ये फला फला अमुक अमुक व्यक्ति वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं। योग्य निमित्त होता ही है, जैसा कार्य होता है तो कार्य के अनुरूप निमित्त भी होता है। चाय मीठी बनानी हो तो क्या करना हा? जैसे हम आज इनके घर में गए अभी चाय बनाओ नमक डाला उसमें तो चाय मीठी होगी कि नहीं चल रहा है। तो जैसा कार्य होगा उसके लिए कारण भी तो अनुकूल होना चाहिए ना। तो यहाँ वही कहते हैं कि जो स्वयं तिर गए हैं ऐसे ही जीव तिरने में निमित्त है, अन्य कोई है। अभी क्या कहते हैं भगवान योगियों को तिरने में निमित्त है, योगी यानी मुनिराज जो है इनको। तथा कहते हैं भगवान जिन्होंने स्वरूप के आनंद में जुड़ान किया है उन योगियों को तिरने में वे निमित्त है। वे चार तीर्थ के करने वाले हैं। ये चार और तीर्थ के बीच में गैप चाहिए, चार तीर्थ साथ में होंगे। वे चार तीर्थ के करने वाले हैं, इसलिए भगवान में तीर्थपना है, इसलिए वे योगियों को तिरने में समर्थ है। अभी तीर्थ किसको कहते हैं? तो जिसके निमित्त से तिरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। अभी ये तीर्थ क्षेत्र है वगैरह और लौकिक बात नहीं, वास्तव में तीर्थ का अर्थ ही उपदेश होता है। तीर्थंकर यानी उपदेश को जो कहते हैं वे तीर्थंकर, या जो संसार से तिरने में निमित्त है वह तीर्थ है। तो क्या कहते हैं यहाँ चार तीर्थ के करने वाले, यानी ये चार अनुयोग है ना। अभी आगे यहाँ तो ऐसा बताया है इसमें नहीं है कि ये जो गणधर है और ये जो शास्त्र है इनको भी तीर्थ कहते हैं, क्योंकि गणधरों के द्वारा ही शास्त्रों की रचना हुई है, चार अनुयोगों की रचना तो उनके द्वारा ही हुई है। चार अनुयोग क्या 11 अंग और 14 पूर्व तक के, तो सारे चारों अनुयोग में आते हैं। तो डिटेल और थोड़ा सा विशेष रूप से तो क्या कहा कि जिसके द्वारा तिरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। तो चार अनुयोग ये भी तीर्थ है। तो कहते हैं यहाँ योगी अर्थात आत्मा के ज्ञान सहित रमणता करने वाले संतों को समझना, इसमें चौथे पांचवे गुणस्थान वाले गौण रूप से आ जाते हैं। यानी जब मुनियों की बात कह रहे हैं तो कहते हैं वो अन्य भी उसमें समाये हैं, कौन से चौथे गुणस्थान वाले और पंचम गुणस्थान वाले। इस प्रकार जो तिरते हैं उनको भगवान निमित्त है, इसलिए भगवान तारने में समर्थ है ऐसा कहा गया है। अब आगे इसमें कोई प्रश्न है? हाँ डॉक्टर साहब चले आगे। भगवान को वंदन करने वाला कैसा होता है? देखो अभी वो भगवान कैसे होते वो बात नहीं बोल रहे कि भगवान के वंदन करने वाला कैसा होता है। प्रवचन सार के कर्ता कुंद कुंदा आचार्य कौन है, वे किसको नमस्कार करते हैं और किसे नमस्कार करना योग्य है? यह बात यहाँ कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं नित्य न्यायक रूप यानी जानन देखन स्वभावी ऐसा जो मेरा रूप है, तो मैं नित्य न्यायक रूप हूँ। मेरा स्वभाव मेरे ज्ञान से जानने में आवेशा है और जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। पहले तो अपनी स्वयं की बात करें, अब कहते हैं वास्तविक नमस्कार करने वाले का आत्मा कैसा हो उनकी बात करते हैं। सर्वज्ञ को समझे बिना मात्र नमस्कार करे तो पुण्य है, किंतु उससे धर्म नहीं होता। प्रतिभा बताई, देखो कितनी बढ़िया बात बताई है। क्या कहा है, क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ को समझे बिना मात्र नमस्कार करे तो पुण्य है, किंतु उससे धर्म नहीं होता। यानी ये कहना चाहते हैं तो क्या हम भगवान को नमस्कार नहीं करें? यानी करो, लेकिन उससे धर्म होता है ऐसा मत मानो, क्योंकि यह जो राग परिणाम है वह राग तो बंध का ही कारण है, है? और अपने को कैसी अवस्था प्राप्त करनी है, अबंध अवस्था, मोक्ष अवस्था, है ना? तो फिर हम ऐसे परिणाम करें कि जिससे हमें निर्बंध या अबंध मोक्ष अवस्था प्राप्त हो, तो वो कैसे प्राप्त हो? तो कहते पुण्य और पाप या पाप और पुण्य से रहित ऐसा जो शुद्ध परिणाम है, अपने स्वरूप में जो एकाग्रता है, ऐसे परिणाम अगर यह जीव करता है तो वह निश्चित रूप से धर्म होगा। क्या कहें, देखो आगे ज्ञान मेरा स्वभाव है। क्या कहते हैं, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान ज्ञान से ही जानता है, निमित्त और राग से जानूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। देखो हम क्या कहते हैं कि हमें कोई भी जो शिष्य होता है वो तो ऐसा ही कहेगा कि भाई गुरु आपने हमको समझाया इसलिए हम समझे, लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ज्ञान ज्ञान से ही होता है। यहाँ जो ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है वह ज्ञान गुण में जो होने वाली पर्याय वो स्वयं से हो रही है, गुरु आकर उसकी पर्याय पलटा देवे ऐसी बात है नहीं। तो कैसा कहता है, निमित्त और राग से जानू, यानी निमित्त से मुझे ज्ञान होगा या जानने की क्रिया होगी, या मैं राग करूं, अभी बहुत पढ़ना है, मेरी बहुत इच्छा है कि पढ़ के मैं एकदम होशियार बन जाऊं, तो कहते हैं विकल्पों से जानू ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। अरे उसके पहले रह गया, ज्ञान मेरा स्वभाव है और ज्ञान ज्ञान से ही जानता है, और आगे बताते हैं निमित्त और राग से जानू ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। देह मन वाणी की क्रिया मेरी नहीं है, क्योंकि ये देह जो है वह तो आहार वर्गणा है, मन है यह मनोवर्गणा है, और वाणी है वह भाषा वर्गणा है, ये सारी वर्गणा है पुद्गल का रूप है, तो पुद्गल की क्रिया मेरी नहीं है और क्या है, मेरे अधीन नहीं है। दोनों बातें समझ लो, विकल्प से आत्मा प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं है, मेरे ज्ञान से अनुभव में प्रत्यक्ष हूँ ऐसा मैं हूँ, यानी अगर मुझे जानना है तो मुझे मैं अपने स्वयं के ज्ञान से ही जान पाऊंगा, अन्य कोई भी कारण से नहीं। मैं दृष्टा ज्ञाता सामान्य स्वरूप हूँ, मैं एक स्वसन्मुख ज्ञान वेदन से प्रत्यक्ष होने योग्य हूँ, ऐसा साधक जीव भगवान को नमस्कार करता है, ऐसा श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं। यानी इनका इन शॉर्ट अपनी भाषा में समझना हो तो जिसने आत्मानुभव किया है उसका ही भगवान को नमस्कार करना साचा नमस्कार कहा जाता है। वंदन करने योग्य भगवान कैसे हैं, तीन लोक से पूजित है। अब नमस्कार करने योग्य महावीर भगवान कैसे हैं, किस लिए नमस्कार करने योग्य है वह बताते हैं। स्वर्ग के इंद्रो भवनवासी देवों के इंद्रो, ये स्वर्ग के इंद्रो के बाद कॉमा भी है, भवनवासी देवों के इंद्रो तथा नरेंद्रो इस प्रकार तीन लोक के इंद्रों से वंदित है, पूज्य है, इसलिए मैं उन्हें वंदन करता हूँ। इस प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान कथन है। यहाँ वंदन करने वाला और वंदन करने योग्य की व्याख्या चलती है। मैं पर्याय में पूर्ण नहीं हूँ, इसलिए वंदन करने योग्य कौन है और उनको वंदन करने का विकल्प उठा है, इसलिए वंदन करने लायक कौन है, उनका विवेक बताते हैं। साधारण लोग पूजे इसलिए नहीं, अपितु सम्यक दृष्टि ऐसे इंद्र है, उनसे भी वे तीर्थंकर पूजित है। तो पहले तो ये बात हमारे को ख्याल में रहनी चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसी को इंद्र पद मिल सकता है, सभी सम्यक दृष्टि को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंद्र तो है एक और सम्यक दृष्टि तो है अनेक। लेकिन जो जो इंद्र होगा वो तो सम्यक दृष्टि होगा ही होगा। जैसे आपको राष्ट्रपति बनना है, कौन से अपने हिन्दुस्तान का है, इंडिया का, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 35 साल का होना चाहिए, 34 साल और 11 महीना नहीं, नॉट अलाउड, 35 साल का होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, वो बात अलग। मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा इंद्र पद प्राप्त करना है या इंद्र पद जिसको मिलता है वह मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि बोलते बोलते हुए सम्यक दृष्टि, ये कल्पवासी देवों की बात कर रहे हैं। हम इंद्र भी तो होंगे ना, लेकिन वो आने वाले नहीं है ना, इन्हें यहाँ पर प्रतिंद्र और इंद्र आएंगे ना। मैंने तो वही बताया ना कि हर एक सम्यक दृष्टि को इंद्रपद नहीं मिलता। ये भवनवासी जो देव होते हैं इंद्र, वो तो वहां जाने के बाद होंगे सम्यक दृष्टियों से। क्या कहा देखो, स्वर्ग के इंद्रो, भवनवासी देवों के इंद्रो तथा नरेंद्रो, ये तीनों बातें ली ना, यानी ये स्वर्ग के इंद्र यानी ऊर्ध्व लोक के, ये देवेंद्र जो है वो मध्य लोक के और भवनवासी वो अधोलोक वाले, तीन लोक के इंद्र उनसे वंदित है, पूज्य है, इसलिए मैं उन्हें वंदन करता हूँ। अभी आगे 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 गए थे, नीचे से दूसरी लाइन, साधारण लोग पूजे इसलिए नहीं अपितु सम्यक दृष्टि ऐसे इंद्र है, उनसे भी वे तीर्थंकर पूजित हैं। इस प्रकार भगवान की महिमा जानकर मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे ज्ञान से प्रत्यक्ष होने योग्य ऐसे दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या कहते हैं कि मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ और मेरे स्वयं के ज्ञान से मेरा स्वयं मैं वेदन कर सकता हूँ, ऐसा हूँ, ज्ञान से प्रत्यक्ष होने योग्य हूँ। संसार शरीर भोग मन वाणी मेरे में नहीं है, ऐसी दृष्टि पूर्वक दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान से प्रत्यक्ष हो, ऐसा मैं आत्मा हूँ। निश्चय से स्वयं को नमस्कार करने योग्य है और व्यवहार से भगवान नमस्कार करने योग्य है। क्या कहते हैं, वास्तव में क्या है कि जब तक यह जीव ये नहीं जानता है कि मैं स्वयं का अनुभव कर सकता हूँ, तब तक वो उसके तरफ जाएगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि स्वयं को नमस्कार करने योग्य है। यहाँ द्वैत भी नहीं बताया, बताया तो बिल्कुल मामूली का है क्या, लेकिन वहाँ दो भिन्न नहीं, एक को ही दो तरफ से बताया। और वहाँ क्या कहते हैं, व्यवहार से भगवान नमस्कार करने योग्य है, यानी वहाँ नमस्कार करने वाला अलग और जिन्हें नमस्कार किया जाता है वह अलग। और वैसे ऊपर में भी देखा जाए तो निश्चय से स्वयं को नमस्कार करने योग्य है, यहाँ पर भी करने वाली पर्याय अलग और जो त्रिकाली स्वरूप है वह अलग। इस तरह वहाँ भी द्वैत घटित कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्वयं का अनुभव करता है तो वह अद्वैत हो जाता है। कहते हैं भगवान तीन लोग में पूज्य है, इसलिए मैं उनका वंदन आदर करता हूँ। शुभ राग से जानने में मैं आऊं, ऐसा मैं नहीं हूँ, अपितु ज्ञान से जानने में, ज्ञान से जानने से मैं आऊँ, जानने में मैं आऊँ का ही, ज्ञान से जानने में आऊँ ऐसा मैं हूँ, ये से वाला नहीं चाहिए। देखो क्या कहते हैं, ऐसा मैं नहीं हूँ अपितु ज्ञान से जानने में आऊँ, बीच का से नहीं चाहिए ना, ज्ञान से के बाद में मैं है ना, वो निकाल दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। ओ सॉरी सॉरी, क्या लिखा, अपितु ज्ञान से जानने में आऊं ऐसा मैं हूँ, फिर भी वंद्य वंदक का व्यवहार सर्वथा छूटा नहीं है, यानी अभी भी वहाँ वंद्य वंदक भाव है, सर्वज्ञ भगवान वंद्य है, मैं वंदन करने वाला हूँ ऐसा विकल्प आया है, इसलिए तीन लोक के पूज्य भगवान को नमस्कार करता हूँ। अब कहते हैं भगवान ने गाति कर्म का नाश किया, यह निमित्त का कथन है, तथा कहते हैं भगवान तो गाति कर्म मल को नष्ट कर दिया होने से जिन्हें जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ ऐसी अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है। अभी उनका क्या वर्णन किया है कि उन्होंने गाती कर्म को नष्ट कर दिया, गाती कर्म मल कहा गया उसको, मलिनता है, यानी गाती कर्म को नष्ट कर दिया है, इसलिए वो जगत पर उपकार कर सके ऐसी उनमें परमेश्वरता प्राप्त हुई है। सिद्ध उपादान से मैं परमेश्वर हूँ, भगवान निमित्त रूप से परमेश्वर है, यानी वास्तव में मैं स्वयं ही परमेश्वर हूँ, और वह परमेश्वर पना पर्याय में प्राप्त जब होती है तब वो सामने वाले भगवान उसमें निमित्त है ऐसा कहने में आ रहा है। उन्होंने यानी अरहंत सिद्ध ने द्रव्य कर्मों का नाश किया है, यह निमित्त का कथन है, राग का व्यय करना यह तो पर्याय बुद्धि है। क्या कहते हैं सरला बेन, राग को नष्ट करने जा रहे हैं ना, ये जो राग यानी पाप राग नहीं आने देना और पुण्य राग आने देना, तो कहते हैं तेरी पर्याय बुद्धि है, यानी जब तक तू त्रिकाली ऐसा तेरा जो स्वभाव है स्वरूप है, शुद्ध ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें तू एकाग्र नहीं हो रहा है, तब तक तेरे पर्याय में आने वाले राग द्वेष के परिणाम भी बंद नहीं होंगे। लोग क्या कह रहे, देखो राग का व्यय करना यह तो पर्याय बुद्धि है, निज शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा में एकाग्र होने पर राग की उत्पत्ति ही नहीं हुई, अतः उन्होंने राग का नाश किया ऐसा उपचार से कहने में आता है। कल ये बात आई थी ना भाई, उन्होंने कर्मों का नाश किया ऐसा भी कहने में आता है, यानी वह भी उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, निमित्त निमित्त संबंध बताने वाला कथन है।
यहाँ दो बातें आई है, राग का नाश किया और कर्मों का नाश किया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है?
प्रश्न समझ में आया,
राग का नाश किया, राग उत्पन्न ही नहीं हुआ उसको राग का नाश किया था, तो कर्मों का नाश किया ऐसा जहाँ लिखा है तो वहाँ क्या समझना है?
बोलो। और राग का क्या, वो तो अर्थ समझ में है, लेकिन देखो बात ऐसी है, हाँ
इन्हें दोनों समान लेना क्या, कैसे लेना, राग का नाश किया और कर्मों का नाश किया, दोनों में समानता है क्या, नहीं है, और नहीं है तो कैसी है, तो कैसी कर्म भी नहीं हुआ। जैसे राग उत्पन्न नहीं हुआ वैसे ही कर्म उत्पन्न नहीं होना, ऐसा अर्थ समझना, क्या क्या करना है? प्रश्न ख्याल में आता है? देखो प्रश्न ऐसा है, राग का नाश क्या, इसका अर्थ क्या? राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, उत्पन्न ही नहीं हुए, बराबर। अभी वैसे यहाँ जो घाती कर्म का नाश किया तो वहाँ क्या समझना? कर्म उत्पन्न ही नहीं हुए ऐसा समझना। हाँ वो किस तरह से हुआ वो? हाँ देखो देखो, राग का नाश किया में राग उत्पन्न ही नहीं हुए ऐसा लेना, और कर्म का नाश किया ने एक्चुअल वहाँ जो कर्म है वे अकर्म रूप हो गए, यानी दोनों में ये डिफरेंस है।
यानी वहाँ राग उत्पन्न नहीं हुआ, उसको राग को नष्ट किया,
उसको नाश किया कहीं,
और यहाँ जो ऑलरेडी कर्म बंधे हुए थे वो अकर्म रूप हो गए, यानी उदय
की सत्ता में थे वो भी अकर्म रूप हो गए, निकल गए
और
फिर गए।
और एक भी बात आ सकती है कि राग परिणाम जीव में उत्पन्न हो रहे थे, उसको उसने और उसको उसने क्या किया कि स्वरूप में एकाग्र हुए तो उसकी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसा कहना, और वहाँ वो जो भिन्न द्रव्य में है कर्म जो है वह तो भिन्न द्रव्य में है, तो उसका नाश जो होगा वो अपने स्वयं से होगा, उसका नाश किया ये निमित्त का कथन भी हो सकता है। और यहाँ पर भी स्वरूप में लीन हुआ वह निश्चय होगा, और राग का नाश किया ऐसा कहना वह उपचार होगा। चलो
वो अकर्म रूप हो गए, वो तो निमित्त निमित्त की संबंध है, मगर जैसे राग उत्पन्न नहीं हुआ वैसे कर्म में क्या लेना? कर्म उत्पन्न नहीं होना लेना क्या है? वो एग्जिस्टिंग कर्म निकल गया ऐसा लेना, ऐसा मेरा प्रश्न था। तो जो ऑलरेडी थे एग्जिस्टिंग वो निकल गए,
और राग जो एग्जिस्टिंग थे वो निकल गए नहीं, वो उत्पन्न ही नहीं हुए, इसलिए उसका नाश हुआ था।
राग तो एक एक समय वाला है, वो उत्पन्न ही नहीं हुआ इसलिए उसको नाश किया था। जैसे कर्म आत्मा की सत्ता में है और निकल गए, वैसे राग आत्मा की सत्ता में है और निकल जाए ऐसा नहीं है। पहली पर्याय में थे, अगली पर्याय में उत्पन्न ही नहीं हुए, उसको कहते हैं नाश हुआ।
अब आगे नया पैराग्राफ। आत्मा के स्वभाव सन्मुख होने पर भाव कर्म नाश हो जाते हैं। प्रतिबद्ध भाव कर्म का अर्थ आप जानती हैं? तेजी तू बताएगी भाव कर्म। हाँ लता बेन, हाँ बहुत अच्छा। क्या आगे क्या बताए?
आगे क्या बताए?
हाँ मोह जीव में उत्पन्न होने वाले मोह के परिणाम या राग द्वेष के परिणाम, इनको भाव कर्म कहते हैं। और द्रव्य कर्म यानी क्या? आठ कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं, और नौ कर्म कहने से शरीर मन वाणी, ये तीनों कर्म 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 है, लेकिन इसमें कर्म वास्तव में जो हम आठ कर्मों को कर्म बोलते हैं वो तो द्रव्य कर्म है, और भाव कर्म यानी जीव के मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है वे, और नौ कर्म यानी शरीर मन और वाणी। ये बात हमेशा बार बार आने वाली है, आती है, हम केवल पढ़ जाते हैं लेकिन उसका अर्थ हमारे ख्याल में नहीं आता है, वो क्या कहना चाहते हैं ये हमें ख्याल में नहीं बैठता। देखो एक भी शब्द नहीं आता है तो आपको पूर्ण पूर्ण यहाँ परमिशन है, आप पूछ सकते हैं बीच में रुकाकर, क्योंकि यहाँ आप इतना दूर से आते हैं और कुछ इतना दो घंटा बैठने के बाद भी कुछ ख्याल में नहीं आता है तो आना फजूल है। ऐसा मत समझना कि अरे लोग हंसेंगे मेरे को, कोई चिंता नहीं करना, वो हंसेंगे तो उनके कसाई दिखेंगे अपने को, खबर क्या क्यों? हाँ जी बराबर बराबर।
तो घाती कर्म किसमें है, भाव कर्म है कि द्रव्य कर्म में है? घाती कर्म किसमें आते हैं, भाव कर्म में कि द्रव्य कर्म में? अभी हमने देखा ना घाती कर्मों का नाश किया। हाँ कौन से द्रव्य कर्म है?
अरे घाती कर्मों में कौन कौन आएंगे ऐसा कुछ नहीं।
बराबर
बहुत सुंदर सही उत्तर दिया आपने कि ये घाती कर्म जो है वह तो द्रव्य कर्म का ही एक भाग है और वो घाती कर्मों में चार कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय, मोहनी और अंतर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अपनी बात क्या हो रही है? आत्मा के स्वभाव सन्मुख होने पर यानी जब यह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है स्वभाव के सम्मुख होने पर भाव कर्म नाश हो जाते हैं। यानी ऊपर कहा ना कि राग द्वेष का नाश हो जाता है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर भगवान ने कर्म का नाश किया ऐसा कहने में आता है। इस कारण वे जगत पर अनुग्रह यानी उपकार करने में निमित्त है यानी शुभ राग आया है कि ऐसे भगवान हैं, ऐसे सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे नमस्कार करने लायक है ऐसा विवेक वर्तता है। भगवान जगत पर अनुग्रह करते हैं परंतु किन पर? जो अपनी आत्मा पर अनुग्रह प्रकट करे उन पर भगवान अनुग्रह करते हैं। यानी क्या? जिन्होंने श्रोता अनुभव किया है ऐसे जीवों पर भगवान अनुग्रह करते हैं ऐसा निमित्त रूप से कहने में आता है।
अनुग्रह में उपकार।
हाँ बताओ निमित्त कहो उपकार कहो
उपकार करते हैं। जो अपनी आत्मा का उपकार करते हैं उन पर भगवान ने उपकार किया वो भगवान प्रसन्न हुए ऐसा कहने में आता है।
इसको दूसरा शब्द उपग्रह भी है। अनुग्रह उपग्रह सहाय निमित्त ये सारे एकार्थवाची शब्द है। ये उपग्रह कहाँ आया था याद है किसको? हाँ हाँ आपको याद होना चाहिए बहन। हाँ बोलो 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 का बोलो। अरे बोलो ना बराबर नहीं बोला आप है भाई लेकिन उसका उच्चारण सही नहीं है। तुम बोलो का परस्पर उपग्रहो जीवानाम। इधर देखा आपने वो ऐसा लोकाकाश में हाथ बीच में डाल के ऊपर लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि यह जीव एक दूसरे में निमित्त है और हम क्या कहते समझते हैं अरे ये जीव ने उसको उपकार करना मांगता है उसके जीव और जीने को ऐसा उल्टा अर्थ लगाते थे। तू ना पर को मार सकता है ना जिला सकता है हा? जीवो और जीने दो काय का जीने दो वो जो अपने आयु जितना लेके आए उतना जिएगा। मान्यता में अपनी खुद है कि दूसरे एक दूसरे को अरस परस मदद करना चाहिए ऐसा अर्थ निकालते हैं। ऐसा नहीं है ये परस्पर उपग्रह यानी एक दूसरे में निमित्त है। अब वो किसमें क्या है वो बहुत लंबी जोड़ी बात है। तो यहाँ ये जो अनुग्रह है वो उपग्रह या निमित्त है।
क्या शब्द है उपग्रह है ना उपग्रह उपग्रह है। हाँ, हाँ।
ग्रह ग्रह
क्या क्या
वो अलग है
वो ब्रूहन उपब्रूहन अलग।
चलो अभी हम यही रुकते हैं क्योंकि हाँ
तो भाव कर्म में घाती आते ही नहीं है।
भाव कर्म तो राग मोह राग द्वेष परिणाम उसको भाव कर्म कहेंगे ना। उसमें घाती कर्म तो अलग सेंटेंस है। घाती कर्म में अभी हमने चार नाम देखे ना वो है देखो वहाँ बात तो ऐसी है तो जब यह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब क्या दो बातें होती हैं? क्या जब ऐसी बात होती है तब एक बात समझ लेना कि तीन बातें एट ए टाइम होती है। कौन कौन सी? एक स्वरूप में लीनता, तो वहां क्या हुआ कि हुआ क्या नहीं तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई, ये नास्ति का कथन है। अस्ति का क्या है? स्वरूप में एकाग्रता हुई। और वहां बाहर में क्या हो गया कि वह कर्मों का नष्ट हो गया। तीनों का समय एक है। तो आप जब राग द्वेष की तरफ दिखाएंगे तो वह तो उत्पत्ति नहीं हुई तो वह नष्ट हो गया। कर्म की उत्पत्ति हो तो उदय में आके झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उदय में आके झड़ जाते हैं, इसलिए उसका नाश हो गया था। जैसा जैसा जीव आप हाँ करते हैं ना, लेकिन उसकी स्टॉक बहुत है। अभी आपके किसी का कर्जा होगा 5 अबज का और आपने उसमें से 2 करोड़ दिया तो अभी बाकी तो है ना, क्योंकि वो तो आगे जितना काल उसका 13वां गुणस्थान रहेगा, 14वां गुणस्थान रहेगा, तब तक तो अजाती कर्म तो रहेंगे उनके साथ। अभी देखो ये जब जीव थे, हाँ जी हाँ निकल नहीं, मतलब अभी बात ऐसी उसमें अधिक स्टॉक है, उनके सत्ता में अधिक पड़े हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको वैसे ही रखा है और पहले खाली एक एक को हटा देते हैं, जैसा अपने किस पेशेंट को हटा देंगे, ऐसा नहीं। सभी को एट ए टाइम ट्रीटमेंट चालू है ना हॉस्पिटल में, ऐसा ये सारे 8 ही कर्मों को थोड़ा 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 सब जा ही रहे। देखो हमने क्या देखा था, अगर आपको याद होगा तो